खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम नए अहदनामा में से इफ़्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त उसका पांचवा बाप उसकी दसवीं आयत से सीख रहे हैं और तजर्बा से मालूम करते रहो, और इस बात की क्या कहते हैं कि तय तक पहुंचते रहो कि खुदावंद खुदा को क्या पसंद है। इसलिए पिछले दिनों में हमने देखा कि खुदावंद खुदा ऐसे हदियों को, ऐसे दिलों को पसंद करता है जो खाकसारी की हालत में उसके हुजूर आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से अब्रानियों उसका ग्यारहवां बाप उसकी सात आयत से। हम आज नूह की ज़िंदगी पर गौर करेंगे और उसकी ज़िंदगी पर एक झलक डालेंगे थोड़े से वक्त में कि उसकी ज़िंदगी किस तरह खुदा के हुजूर पसंद आई। अब्रानियों ग्यारहवां बाप उसकी सात आयत, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने को बचाने के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुर्ज़म ठहराया और रासबाजी का वारस हुआ जो ईमान से है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि खुदा का बंदा नूह जो ईमान से उन तमाम अनदेखी चीज़ों के बारे में हदायत पाकर क्या करता है, उस पर अमल करता है। और ये ईमान का सादा और बहुत गहरा भेद है जिसे कह सकते हैं। जब अब्रानियों ग्यारहवां बाप उसकी पहली आयत देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान क्या है? उन तमाम अनदेखी चीज़ों पर यकीन कर लेना, एतमाद कर लेना, एतकाद कर लेना, उनका क्या है? सबूत है। जिसके बारे में बंदा खुदा का पालूस रसूल ये फरमाता है दूसरा करंथियों पांच बाप उसकी गालबन सात आयत में कि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। और फिर खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है कि हम उस अनदेखे खुदा पर यकीन रखते हैं जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, और कहता कि हम जो एक दूसरे को देखते हैं अगर देखते हुए पर यकीन या एक दूसरे से मोहब्बत ना करें तो उस अनदेखे खुदा से किस तरह मोहब्बत कर सकते हैं। सो तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। सो नूह की ज़िंदगी पर आज हम गौर करेंगे। मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में नूह की ज़िंदगी पर हम गौर करेंगे। उसका पांच बाप, वहाँ पर हमें नूह के बारे में जिक्र मिलता है उसकी 28वीं और 29वीं आयत के, ईमान ही से उसने हदायत पाई, ईमान ही से उसने इस बात की ताबेदारी की कि खुदा ने उसे कहा है कि एक कश्ती बना, और वो कश्ती उसके ख़ानदान के लिए और जो कोई उसमें सवार होगा वो बच जाएगा। पदेश पांच बाप उसकी 28वीं और 29वीं आयत हमें नूह के बाप के बारे में बताती है कि लेमक के घर में वो पैदा हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा। नूह के नाम का मतलब क्या है? आराम। आराम, जैसे हर एक नाम का कोई ना कोई मतलब है। यीशु का मतलब है निजात देने वाला, एलिया का मतलब है खुदा मेरे साथ है, हवा का मतलब है यानी के जिंदों की माँ, आदम का मतलब है यानी के पहला आदम, पहला इंसान जो खुदा ने पैदा किया, और या फिर उसे कहा जाता है कि लाल रंग की मिट्टी। सो आदम के नाम के ये मतलब निकलते हैं कि लाल रंग की मिट्टी यानी के मिट्टी से बनाया गया। और जब हम नूह को देखते हैं तो नूह के बारे में क्या लिखा है, और लेमक 120 बरस का था जब उसके एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम नू रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। और नू की पैदाइश के बाद लमक 595 बरस जीता रहा, और उसने उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। सो नू के नाम का मतलब क्या है कि जो लानत खुदा ने आदम को दी थी कि मट्टी जमीन अब से तुझे क्या देगी, ऊंट कुटारे देगी, तुझ पर ये क्या है, लानत है कि तू मेहनत मशक्कत की रोटी खाएगा, तुझे दुख मिलेंगे, तुझे ये तमाम मेहनत करनी होगी। सो नू की ज़िंदगी क्या करती है, उसका बाप कहता है कि इसके वसीला से खुदा हमारे हाथों की मेहनत मशक्कत और ज़मीन से वो तमाम ज़मीन पर वो तमाम जो लानत है उससे खुदा हमें क्या देगा, आराम देगा। सो नू के नाम का मतलब क्या है, आराम, आराम, सकून या चैन। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं रहाई भी, कि किसी बात से, किसी ऐसी उलझन से किसी को क्या देना, सुकून देना। जैसे जब कोई किसी शिकंजे में शिकारी फंसा लेता है जानवर को, उसको आज़ाद किया जाता है, तो उसे क्या मिलता है, सुकून, आज़ादी, या कह सकते हैं उस दुख से आराम। सो ये है नू के बारे में। सो खुदावंद खुदा ने उसे हुक्म दिया कि एक कश्ती बना। मेरे साथ देखें पैदाइश 6 उसकी 14 14 में उसे ये हदायत दी गई है, 14 से 22 तक। ये हदायत है कि जब तू कश्ती को बनाना तो उसे इस तरह बनाना, उसमें ये बनाना और ये ना बनाना। सो आए देखें क्या कहा गया है, 14 खुदावन खुदा यहाँ पर नू से बात कर रहा है और कहा, तू गोफिर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठड़ियाँ तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300, उसकी चौड़ाई 50 और उसकी ऊंचाई 30 हो। जब हम इस लंबाई चौड़ाई को गिनते ना तो क्या निकलता है, इसकी जो वांड निकलती है वो क्या निकलती है, जैसे सलीब की वांड निकलती है। अगर अब कभी मौका मिले तो इसे करके देखें कि कश्ती की लंबाई 300, चौड़ाई 50 और ऊंचाई 30। तो ये आपके सामने सलीब की सूरत बन जाएगी, सलीब का नक्शा बन जाएगा। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 बनाना, ऊंचा, दूसरा और तीसरा, ऊंचा, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूँ, और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। सो दुनिया पर जब यहाँ लफ्ज़ देखते हैं तो आसमान के नीचे से सबको खुदावन कहता है कि मौत आएगी, पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा, और तू कश्ती में जाना तो तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ। सो यहाँ पर हम सब देखते हैं कि खुदा ने उसे सब कुछ बताया है, लेकिन कहा है कि मैं तेरे साथ अहद करता हूँ। और जब हम 19वीं आयत को देखते हैं, और जानवर की हर किस्म में से दो दो अपने साथ किश्ती में ले ना कि वो तेरे साथ जीते बचें, वो नर व मादी हों, और परिंदों की हर किस्म में से और चिरिंदों की हर किस्म में से और ज़मीन पर रींगने वालों की हर किस्म में से दो दो तेरे पास आएं ताकि वो जीते बचें। हवा के परिंदे, रींगने वाले, ज़मीन पर चलने वाले उन तमाम जानवरों को क्या करना, वो तेरे पास आएंगे। और तू हर तरह के खाने की चीज़ लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया, और नूह ने यूं ही किया। खुदा ने उसे हदायत दी है और नूह ने उसे पूरा किया है। बहुत दफ़ा खुदावंद खुदा हमें कुछ कहने को करता है, कहता है, तो हमें उसे वैसा ही करना चाहिए जैसे वो कहता है। हम बहुत दफ़ा मूसा की तरह करते हैं कि खुदा ने कहा दो दफ़ा और फिर गुस्से में आकर उसने सही हदायत का ताबेदारी नहीं की और पानी चट्टान से ना निकला। और क्या हुआ, खुदावंद नाराज़ हुआ और उसके इवज़ में मूसा को मुल्के कनान में जाने का मौका नसीब ना हुआ। खुदावन ने पहले ही उसे अपने पास बुला लिया। सो खुदावन ने उसे हदायत की, यूं करना। आगे क्या लिखा है, जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया वैसा ही अमल किया। सो यहां पर हदायत है कि उस कश्ती को बनाना जिससे तेरा खानदान बच जाएगा। हमने इब्रानियों 11 बाप उसकी 7 आयत में यही पढ़ी, और ईमान से उसने जो कुछ हदायत पाई उस अनदेखी बातों पर यकीन किया कि क्या होने वाला है। आपको एक हैरानगी की बात जो बहुत दफ़ा नहीं बताई जाती, नूह के तूफान से पहले कभी भी ज़मीन पर बारिश नहीं हुई थी। पूरी हमें पिछले 5 बाप बताते हैं कि पहले बारिश नहीं हुई थी। ज़मीन पर जितनी पैदावार होती थी वो किससे होती थी, ज़मीन से कुर उठती थी। जैसे कहते हैं कि ज़मीन पर औस पड़ती है, वैसे वो ज़मीन से जो भाफ या औस, ये खुदा का निज़ाम था, वो निकलती थी और उससे ज़मीन सराब होती थी। सो उससे पहले बारिश नहीं हुई थी। तो जब खुदा के बंदा नूह ने खुदा को खुश करने के लिए ये पैगाम देना शुरू किया कि सब ज़मीन के रहने वाले क्या करें, मेरी बात माने, तौबा करें, इस कश्ती में आ जाएं, क्योंकि तूफ़ान आने वाला है, बारिश का तूफ़ान आएगा, सब गर्क हो जाएंगे। तो किसी ने यकीन ना किया। क्यों? क्योंकि पहले कभी बारिश हुई ही नहीं थी, पहले कभी बारिश हुई ही नहीं थी, और इसके बायस लोगों ने क्या खाई, ठोकर खाई। सो जब हम पूरा 7वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें हमें सारी बातों का पता चलता है कि वो किस तरह उनको बयान करता है कि इस महीने के इस दिन बारिश होगी, आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, खिड़कियां खुल जाएंगी, और जो कोई इस कश्ती में होगा वो बच जाएगा, जो कोई नहीं आएगा वो मर जाएगा। मेरे साथ निकालें पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत, कि वो क्या करता रहा, वो पैगाम देता रहा, लोगों को समझाता रहा। जैसे आज के दौर में खुदा का कलाम हर एक पासबान को, हर एक मनाद को, हर एक ईमानदार को, हर एक बेटे और बेटी को कहता है। जब हम 18वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये मिलता है जिक्र खुदावंद यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने नारास्तों में क्या की, मनादी की। पहला पत्रस 3 बाप उसकी 20वीं आयत, और जब हम देखते हैं कि 18वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब हुए तो वो आलम रवा में, पाताल में जाकर उन कैदी रूहों पर मनादी करते हैं, उनको बयान करते हैं कि फतह का काम मुकम्मल हो गया, और उन तमाम कैदी रूहों को आसमान पर ले गए। वो तमाम ईमानदार जो पुराने अहदनामे के थे, जो बाप इब्राहिम की गोद में थे, उन सब को कहाँ पर ले गया, فردوس میں خدا کے حضوری میں. اور 20 آیت, جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی جب خدا نوح کے وقتوں میں تحمل کر کے ٹھہرا تھا, اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانے پانی کے وسیلہ سے بچیں. 8 جانے. ان تمام قیدی روحوں کو منادی کی گئی, مرنے سے پہلے ان سب کو خداوند خدا کا کلام سکھایا گیا, سنایا گیا کہ قہر آنے والا ہے, اگر قہر سے بچنا چاہتے ہو تو آرام کی جگہ کون سی ہے, یہ کشتی ہے. سو پرانے ہنامہ میں یہ کشتی یسوع مسیح کی نمائندگی کرتی ہے, اور آج کے دور میں ہم سب کے لیے صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیا. اور کیا کہتا ہے کہ 8 جانیں بچیں, 8 جانیں بچی, اور ان 8 جانوں نے کیا کیا, خداوند خدا کی بات کو مانا اور وہ اس کشتی میں داخل ہوئے. اور 7 اور 8 باپ ہمیں تمام کہانی بیان کرتا ہے کہ کیا ہوا. اس لیے طوفان آیا, پانی چڑھ آیا, اور سب کچھ ہوا, اور خداوند خدا نے نوح سے کہا کہ میرے لیے ایک مذبح بنا, میرے لیے ایک مذبح بنا. پہلے کہا کشتی بنا, کشتی سے ساتھ کہا کہ منادی کر, اور اس نے منادی کی, اس نے کشتی بنائی. وہ بیان کرتا رہا کہ آسمان کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی, کسی نے یقین نہیں کیا. جیسے آج کے دور میں یسوع مسیح آئے گا اور ہر ایک کو اس کے کام کے موافق بدلہ دے گا, اور ہر ایک کا انصاف کرے گا, ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا دے گا. سو یسوع مسیح جلد آنے والا ہے, اس لیے ہم تجربہ سے معلوم کرتے رہیں کہ خداوند کو کیا پسند ہے. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 8 باپ اس کی 20 آیت. جب خداوند خدا نے سب کچھ کیا کہ کیا ہوا, چھٹے مہینے کی پہلی تاریخ کو جب پانی سوکھ گیا, کشتی زمین پر ٹھہری ہوئی تھی, اور خداوند خدا نے ان کو کہا کہ باہر آؤ اور میرے لیے کیا کرو, قربانی چڑھاؤ. سو 20 آیت میں کیا لکھا ہے, جب سب کچھ ہو گیا کہ سب جانور, رینگنے والے, ہوا کے پرندے اور زمین پر چلنے والے اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل آئے. 19 آیت یہ کہتی ہے, اور 20 آیت میں لکھا ہے, تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا. ایک جگہ مخصوص کی, دوسرے لفظوں میں ایک مذبح بنایا, اور سب چوپاؤں اور ان پاک اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانی چڑھائی. سوختنی قربانی چڑھائی, اس پر قربان کیا, قربانیاں کی خداوند کی مرضی کے مطابق, اور خدا کو کیا ہوئی, خوشی. 21 آیت میں کیا لکھا ہے, اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی, اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا, کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے ہی برا ہے, اور نہ پھر سب جانوروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا. تب خدا نے اس سے کیا کیا, وعدہ کیا, اس لیے اب زمین پانی سے برباد نہ کی جائے گی. کس سے ہوگی؟ آگ اور اولے اور سورج اور چاند اپنی روشنی چھوڑ دے گا, اور آسمان کی تمام آفتیں زمین پر ہوں گی. اس لیے اب زمین پانی سے برباد نہیں ہوگی, کیونکہ جب بارش ہوتی ہے, آپ کو دیکھتے ہیں نا, وہ جسے کہتے ہیں گڈی پٹولے کی پینگ بچے کہتے ہیں, لیکن ہم اسے کہتے ہیں کوزے فضا جسے کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ خداوند خدا کا وعدہ. خداوند خدا کا وعدہ تھا بنی نوع انسان کے ساتھ کہ اب سے ایسا ہوگا. جب جب بارش ہوتی ہے وہ کوزے فضا آتی ہے, وہ خداوند خدا کا وعدہ تھا نوح کے ساتھ کہ تب اب سے ایسا نہ ہوگا. سو حاصل کلام کیا ہے؟ کہ خداوند خدا کا بندہ نوح خداوند کی مرضی سے اس کی منادی کرتا رہا جس سے خدا کو خوشی ہوئی. اس نے اس کی ہدایت کو مانا اور اس کشتی کو بنایا اور اس کی تمام ہدایت کو مانا, خدا کو خوشی ہوئی. اور اس نے خدا کی مرضی کے مطابق مذبح بنایا اور اس مذبح پر قربانیاں چڑھائیں, اور ان قربانیوں سے کیا ہوئی, خداوند کو خوشی ہوئی. سو ہم سب کے لیے خداوند خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی مرضی کو تجربے سے معلوم کریں, ایمان سے اس کا پیغام دے. پیغام کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح واپس آنے والا ہے, اس لیے توبہ کرو, توبہ کرو, خداوند یسوع پر ایمان لاؤ. یہ ہم سب کا پیغام ہے, اور اس پیغام کا بھی یقین لوگ نہیں کریں گے. جیسے نو نے بیان کیا کہ بارش کے لیے اس نے کہا کہ بارش ہوگی, آپ پیچھے پانچ باب پڑھیں گے تو وہاں پر کہیں بھی بارش کا ذکر نہیں ملتا. اس سے پہلے کبھی بارش ہوئی ہی نہیں تھی. جب اس نے یہ کہنا شروع کیا تو لوگ اسے کہنا شروع کرتے ہیں کہ تو ستے آ گیا ہے, ہو سکتا ہے بہت سی دوسری باتیں کہیں ہوں. سو ہمیں یسوع مسیح کا پیغام دینا ہے, اور وہ پیغام کیا ہے؟ لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 10 آیت, ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. سو ہمیں نوح کی طرح ایمان سے چلنا ہے, کیونکہ ایمان سے چلنے والوں پر خداوند خدا کیا کرتا ہے, خوشی کرتا ہے. سو ہم خدا کے زور جھکیں, اور آج یسوع مسیح کی گواہی اور منادی اپنی زندگی سے کرتے رہیں.